क्रमांक 7 जिसमें ज्ञान तत्व प्रज्ञापन इसकी हमने शुरुआत की थी वो हम देख रहे हैं। पृष्ठ क्रमांक 7 कल तक हमने देखा था कि यहां पर प्रथमतः तो जो शासनकर्ता महावीर भगवान है उनको नमस्कार करने के बाद उन्होंने जो बाकी बचे हैं ऐसे सारे अरहंतों को सिद्धों को और आचारों को उन्होंने नमस्कार किया है। अब उसके आगे हम देख रहे हैं पृष्ठ क्रमांक 7 पर दो नंबर हो गए ना उसके आगे के। तत्पश्चात इन्हीं पंच परमेष्ठियों को उस व्यक्ति में यानी पर्याय में व्याप्त होने वाले सभी को वर्तमान में इस क्षेत्र में उत्पन्न तीर्थंकरों का अभाव होने से महाविदेह क्षेत्र में उनका सद्भाव होने से मनुष्य क्षेत्र में प्रवर्तमान तीर्थ नायक युक्त वर्तमान काल गोचर करके महाविदेह क्षेत्र में वर्तमान श्री सिमंदर आदि तीर्थंकरों की भांति मानो सभी पंच परमेष्ठी भगवान वर्तमान काल में ही विद्यमान हो इस प्रकार अत्यंत भक्ति के कारण भावना भाकर चिंतवन करके युगपत अर्थात समुदाय रूप से और प्रत्येक को अर्थात व्यक्तिगत रूप से संभावना करता हूँ। संभावना का अर्थ यहाँ लिया है सम्मान करना, संभावना करना यानी सम्मान करना, आराधन करना। अभी देखिए क्या कहना चाहते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं फिर से देखते हैं हम। किस प्रकार से संभावना करता हूं तो मोक्ष लक्ष्मी के स्वयंवर समान जो परम निर्ग्रंथता की दीक्षा का उत्सव यानी आनंदमय प्रसंग है, उसके उचित मंगलाचरण भूत जो कृतिकर्म शास्त्रोपदिष्ट वंदनोच्चार यानि कृतिकर्म शास्त्र के उपदेशे हुए स्तुति वचन के द्वारा संभावना करता हूं। देखो अभी हम आगे देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। 7 नंबर से हम देखते हैं, वो चादर खोल दिया पूरा या नीचे बैठे वो देखो, जब आप वहां बैठते हैं तो आगे की चादर खोल देना। वहां जो भी बैठते हैं आने के बाद स्वयं जब जगह लेंगे, क्योंकि अपने घर में मेहमान है उनको नीचे बिठाना अच्छा नहीं लगता है उनको। आगे भी जगह है, आ जाओ बेन, थोड़ा आ गया ना भावना बेन। हमने तो ऐसा सुना है, जाके भी आया हूं लेकिन याद नहीं है कि निगोद में तो एक शरीर में अनंत जीव रहते थे और हम भी रहे थे, तो यहां थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके आप आराम से बैठना, गोद में किसी को नहीं बिठाना लेकिन आराम से बैठना। चलो क्या कह रहे, देखो ये 3 नंबर का जो मंगलाचरण का श्लोक है, अब कहते हैं तत्पश्चात इन्हीं पंच परमेश्वरों को उस व्यक्ति के यानी पर्याय में प्राप्त होने वाले सभी व्याप्त होने वाले सभी को यानी क्या कहते हैं, वो त्रिकालवर्ती जो ऐसे पंच परमेश्वरी है वो साक्षात वर्तमान में है, ऐसा क्या कहा उन्होंने। तत्पश्चात इन्हीं पंच परमेश्वरों को उस व्यक्ति में यानी पर्याय में व्याप्त होने वाले सभी को वर्तमान में इस क्षेत्र में उत्पन्न तीर्थंकरों का अभाव होने से और महाविदेह क्षेत्र में उनका सद्भाव होने से, ये कहां के मनुष्य क्षेत्र में प्रवर्तमान तीर्थ नाम नायक युक्त वर्तमान काल गोचर करके, यानी अभी तो कहते यहां भरत क्षेत्र में मुनियों का तीर्थंकरों का तो सद्भाव नहीं है लेकिन महाविदेह क्षेत्र में उनका सद्भाव है, तो साक्षात वो यही है ऐसा समझकर, और केवल तीर्थंकरों की ही बात नहीं है तो पांचों परमेश्वरों को जो 3 काल के जो पांचों परमेश्वरी है उनको अभी विद्यमान अभी साक्षात वर्तमान में है ऐसा वर्तमान काल गोचर करके, फिर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि महाविदेह क्षेत्र में वर्तमान श्री सीमंदर आदि तीर्थंकरों की भांति मानो सभी पंच परमेश्वरी भगवान वर्तमान काल में ही विद्यमान हो। देखो क्या कह रहे हैं, जो तीर्थंकर होते हैं या जो केवली भगवान होते हैं यानी सर्वज्ञ होते हैं, उनके ज्ञान में तो एक समय में 3 काल की सारी पर्याय वर्तमान वत् साक्षात अभी यहां घटित हो रही है ऐसा उनके ज्ञान में आता है। तो उसी प्रकार से ये क्या कहना चाहते हैं कि जो 3 काल के जो पंच परमेश्वरी है वो जो 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 पर्याय में स्थित है वो सब एज इट इज वो अभी साक्षात वर्तमान में हमारे सामने, ऐसा समझकर मैं उनको प्रणमन करता हूं, संभावना करता हूं, आदर करता हूं। कहते पंच परमेश्वरी भगवान वर्तमान काल में ही विद्यमान हो, इस प्रकार अत्यंत भक्ति के कारण भावना भाकर चिंतवन करके उन्हें युगपद युगपद, देखो कहीं छोड़ी सी भी जगह नहीं रखी, यानी सबको एक साथ मिलकर युगपद एक साथ अर्थात समुदाय रूप से और प्रत्येक प्रत्येक को अर्थात व्यक्तिगत रूप से संभावना करता हूं, यानी उनका सम्मान करता हूं, उनके आराधना करता हूं। किस प्रकार से संभावना करता हूं कि मोक्ष लक्ष्मी के स्वयंवर समान जो परम निर्ग्रंथता की दीक्षा का उत्सव है वो कैसा उत्सव है, आनंदमय है। देखो किसी को अभी आजकल लौकिक में हम बात करते हैं, किसी की शादी होती है तो कितना आनंद मानते हैं, अरे हमारी बेटी की भी शादी नक्की हो गई तो सारे दुनिया अरे कांग्रेचुलेशन। शादी हमारी नहीं, हमारे बेटे की, तो सब लोग बोलते कांग्रेस। हमको एकदम आनंद है, उत्साह आता है। तो मोक्ष लक्ष्मी ऐसी वैसी लक्ष्मी नहीं, वो पैसे वाली लक्ष्मी नहीं, मोक्ष लक्ष्मी जो अविनाशी है। यह लौकिक लक्ष्मी तो क्या है, आज है कल नहीं, कोई पता नहीं है। तो ऐसे मोक्ष लक्ष्मी के स्वयंवर के समान क्या है, तो ये परम निर्ग्रंथता, उसके दीक्षा का जो उत्सव है, यानी कोई जीव जो मुनि दशा धारण करता है तो उसके जैसा बहुत बड़ा यानी आनंदोत्सव अन्य कोई नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं मोक्ष लक्ष्मी के स्वयंवर के समान जो परम निर्ग्रंथता की दीक्षा का उत्सव है, उसके उचित मंगलाचरण भूत जो कृतिकर्म शास्त्रोपदिष्ट वंदनोच्चार के द्वारा संभावना करता हूं। अब ये दो नंबर का जो पॉइंट है नीचे देखते हैं, कृतिकर्म यानी अंग बाह्य 14 प्रकीर्णों में छठा प्रकीर्ण कृतिकर्म है, जिसमें नित्य नैमित्तिक क्रिया का वर्णन है। देखो पहले तो ये समझिए कि 12 अंग जो होते हैं, तो 12 अंग यानी 11 अंग और 14 पूर्व, और उसके अलावा अंग बाह्य भी होते हैं, वह भी अंग बाह्यों में उसके भी 5 प्रकार है। अभी उसके डिटेल में न जाते हुए अंग बाह्यों में कितने, और वो जो है वो क्या है, 12वें अंग के 14 5 प्रकार है, सॉरी
5 प्रकार में 14 पूर्व एक प्रकार है।
हाँ, 5 प्रकारों में 14वां पूर्व एक प्रकार, 14 पूर्व
एक प्रकार,
बराबर बराबर, आई एम सॉरी। और ये अंग बाह्य जो है वो 14 प्रकीर्णक है उसमें, तो उसमें 14 प्रकीर्णकों में जो छठा नंबर का जो प्रकीर्णक है उसका नाम कृतिकर्म है, और उस कृतिकर्म में नित्य नैमित्तिक क्रिया का वर्णन है, यानी जैसे कैसे पूजा करना आदि जो है वो सारी बातें मुनियों के
कर्म कैसे कैसे उसका वर्णन।
तो कह रहे हैं कि जो कृतिकर्म शास्त्रोपदिष्ट यानी कृतिकर्म नामक जो शास्त्र है उसमें जो उपदिष्ट यानी जो वर्णन किया है, कथन किया है, ऐसा वंदनोच्चार यानी उस तरह बोल के वंदन आदि उच्चार करके, यानी कृतिकर्म शास्त्र में उपदेशे हुए स्तुति वचन के द्वारा मैं उनकी आराधना करता हूं। ख्याल में अब 4 नंबर, ये कल 3 नंबर तो पढ़ लिया था हमने, पेज नंबर 6 पे पहले प्राकृत पढ़ेंगे, फिर संस्कृत, और उसके बाद में गुजराती जो है। किच्चा अरहंतानं सिद्धानं तरणमो गणहराणं अवधारयवगानं साहुणं सेवसौवेसिं कृत्वार्धर्हद्य सिद्धेभ्य तथा नमो गणधरेभ्य अध्यापकवर्गेभ्य साधुभ्यश्चैव सर्वेभ्य हरिहन्तने श्रीसीदने नमस्करणकरिते गणधरणे अध्यापकोने सर्वसाधु समूहने। यहाँ करी ए है ना, तो करी ए एक शब्द चाहिए, वो करी और ए अलग लिखा है वो बराबर नहीं है, हमें एम करिए छिए ऐसा होता है ना, हम गुजराती देखते हैं निकाल के, गुजराती छे ठीक है, हाँ करी ए रीते अलग अलग ये लिखा है, बराबर है। अभी यहाँ पर आप ऐसा करो, अ लिख के उसके ऊपर एक मात्रा दो, ए एड़के का निकाल है ना, करी ए रीते और लिख के उसके ऊपर एक मात्रा दी।
सिद्ध नहीं तो सही सिद्ध नहीं।
हाँ जरा वो भी देखें जरा, हम तो सौ सिद्ध नहीं याद करते हैं।
सौ सिद्ध लिखते
सौ यानी सभी सिद्धों को। अरहंत ने श्री सिद्ध ने हमने तो याद किया था सौ सिद्ध ने। चलो ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 8 पर। अब इस प्रकार अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय तथा सर्व साधुओं को प्रणाम और वंदनोच्चार से प्रवर्तमान द्वैत के द्वारा भाव्य भावक भाव से उत्पन्न अत्यंत गाढ़ इतरेतर मिलन के कारण समस्त स्वपर का विभाग विलीन हो जाने से जिसमें अद्वैत प्रवर्तमान है ऐसा नमस्कार करके उन्हीं अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधुओं के आश्रम को जो कि आश्रम विशुद्ध ज्ञान दर्शन प्रधान होने से सहज शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले आत्मतत्व का श्रद्धान और ज्ञान जिसका लक्षण है ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का संपादक है उसे प्राप्त करके सम्यक दर्शन ज्ञान संपन्न होकर जिसमें कषायकन विद्यमान होने से जीव को जो पुण्य बंध की प्राप्ति का कारण है ऐसे सराग चारित्र को वह सराग चारित्र क्रम से आ पड़ने पर भी गुणस्थान आरोहण के क्रम में बला चारित्र मोह के मंद उदय से आ पड़ने पर भी दूर उल्लंघन करके जो समस्त कषाय क्लेश रूपी कलंक से भिन्न होने से निर्वाण प्राप्ति का कारण है ऐसे वीतराग चारित्र नामक साम्य को प्राप्त करता हूँ। यहाँ ये वाक्य पूरा हुआ है, फिर भी अपन आगे का पढ़ लेते हैं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ऐक्य स्वरूप एकाग्रता को मैं प्राप्त हुआ हूँ, यह इस प्रतिज्ञा का अर्थ है। इस प्रकार तब इन्होंने यानी श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव ने साक्षात मोक्ष मार्ग को अंगीकार किया। ये 4 और 5 दोनों का मिलकर उन्होंने विश्लेषण दिया है। चलो तो ये 5वां भी पढ़ लेते हैं और फिर उसका अर्थ भी देख लेंगे। 6 नंबर के पेज पर 5वां जो है यहाँ पणगम जो लिखा है, पणगम का अर्थ होता है पंचकम, 5 5 एक साथ है।
वहाँ नान हाणा समम की है ना, नान पहाणा समम काल पसंद मतलब की वाटर
दंशन नान
पहाणा समम
पो चाहिए ना बीच
तेसिम विशुद्ध दंशन नान पहाणा समम समासेज पहाणा है ने प्रधाना नान बराबर है बीच में प शब्द डालना। हाँ
इनमें है
पहले पुस्तकों में होगा। हाँ
अपने नए पुस्तकों में
समम समा
आवश्यक है, आवश्यक है।
तेसिम विशुद्ध दर्शन नान पहाणा समम समासेज उपसंपयामि समम जत्तो निर्वाण संपत्ति तेषां विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रदानाश्रमं समासाद्य उपसंपदे साम्यं यतो निर्वाण संप्राप्ति।
पंचकम लिखा ना अभी यहाँ
शुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करूं साम्यनि जेनाति शिव प्राप्ति बने।
अब पेज नंबर आइए फिर से 8 नंबर। अब क्या कह रहे देखो, अब इस प्रकार अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय तथा सर्व साधुओं को प्रणाम और वंदनोच्चार से प्रवर्तमान द्वैत के द्वारा। अभी द्वैत यानी क्या है, दो बातें होती हैं। तो यहाँ जिनको नमस्कार किया जा रहा है और जो नमस्कार कर रहे हैं ऐसे दो जने हो गए, इसलिए वहाँ द्वैत है। द्वैत यानी दोपना है। क्या कहा, इस प्रकार अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय तथा सर्वसाधुओं को प्रणाम और वंदनोच्चार से प्रवर्तमान द्वैत के द्वारा। अब कहते हैं भाव्य भावक भाव से उत्पन्न अत्यंत गाढ़, अभी भाव्य भावक का अर्थ नीचे दिया है, भाव्य यानी भाने योग्य, चिंतवन करने योग्य, ध्यान करने योग्य अर्थात ध्येय, और भावक यानी भावना करने वाला, चिंतवन करने वाला, ध्यान करने वाला अर्थात ध्याता। तो ये दो बातें हो गई ना, तो ये प्रवर्तमान द्वैत जो बातें, तो द्वैत के द्वारा भाव्य भावक भाव से उत्पन्न अत्यंत गाढ़, तो क्या उत्पन्न हुआ है, तो गाढ़ क्या है, इतरेतर मिलन के कारण। अभी इतरेतर का अर्थ ऐसा दिया है, इतरेतर मिलन यानी एक दूसरे का परस्पर मिल जाना अर्थात मिश्रित हो जाना। ये स्वयं भी वितरागी है और वो वितरागी परमेष्ठियों को नमस्कार कर रहे हैं, तो एक दूसरे का जैसे वैसा उनका मिलन हो गया, ऐसा इतरेतर मिलन के कारण क्या हो गया, समस्त स्वपर का विभाग विलीन हो जाने से जिसमें अद्वैत प्रमर्तमान है ऐसा नमस्कार करके। अब क्या कहते, देखो अद्वैत का यहाँ बताते हैं, अद्वैत यानी पंच परमेष्ठी के प्रति अत्यंत आराध्य भाव के कारण आराध्य रूप पंच परमेष्ठी भगवान और आराधक रूप अपने भेद का विलय हो जाता है, इस प्रकार नमस्कार में अद्वैत पाया जाता है। यद्यपि नमस्कार में प्रणाम और वंदनोच्चार दोनों का समावेश होता है इसलिए उसमें द्वैत कहा है, तथापि तीव्र भक्ति भाव से स्वपर का भेद विलीन हो जाने की अपेक्षा से उसमें अद्वैत पाया जाता है। अभी ये तो बात बताने की ऐसी है कि वो द्वैत के कारण अद्वैत हुआ है, लेकिन यह तो निमित्त का कथन है, व्यवहार का कथन है छोटू से। वास्तव में ऐसा होता है कि जब साक्षात ऐसे वितरागी परमेश्वर यानी परमात्मा कौन, अरहंत और सिद्ध और वितरागी आचार्य उपाध्याय और मुनिराज, ऐसे जब उनके ज्ञान में आ जाते हैं तो उनके प्रति भक्ति भावना उमड़ जाती है और ऐसा सब प्रसंग हो जाता है कि वो अपने स्वरूप में, जो स्वरूप कैसा है, ये पंच परमेष्ठी रूप ऐसा जो स्वयं का स्वरूप है, क्योंकि ये जो पर्याय है वो इस आत्मा की ही भविष्यकालीन या वर्तमानकालीन पर्याय है, तो उसी में वो एकाग्र हो जाते हैं, तो उनका जो स्वरूप है वैसा स्वयं का स्वरूप जो है उसमें वो एकाग्र हो जाने तो वो अद्वैत तैयार हो गया, ये वास्तविकता है। लेकिन यहाँ उनको बहुमान देने के लिए कि उनमें और इनमें भक्ति भाव, मतलब उनके कारण इनके अंदर जो भक्ति भाव निर्माण हुआ, इसलिए जो पहले द्वैत था वो अद्वैत हो गया, यानी ज्योत में ज्योत। हाँ, ये सबको ऐसे लग रहा है ना। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हाँ अभी आपने पूछा था ना कि भाई भक्ति मार्ग भी है और क्या ज्ञान मार्ग भी है और जो कुछ और मार्ग है, ये भक्ति मार्ग तो ऐसा ही है कि जब यह जीव पर के तरफ देखता है, आईने में देखता है, तो अपना चेहरा देखने के बाद उसको लगता है कि हाँ मैं ठीक ठाक हूँ। वैसे जब परमेष्ठी को देखते हैं या वितराग भगवान को देखते हैं तो मैं भी स्वभाव से ऐसा हूँ, ऐसा ज्ञान में आते ही जैसे हम वहां से हटकर अपने स्वरूप में एकाग्र होते हैं, ऐसे ये पंच परमेष्ठी का स्वरूप यह तो मेरी ही पर्याय है ऐसा समझकर अपने में एकाग्र हो जाते हैं, तो ये भक्ति जो द्वैत पने से थी वो अद्वैत हो गई, क्योंकि भक्ति भी एक व्यवहार भक्ति और एक निश्चय भक्ति है। लक्ष्मी जी ख्याल में, तो ये व्यवहार भक्ति से हटकर अब ये व्यवहार भक्ति किसको होगी, कि जिसको निश्चय भक्ति शुरू से है। अब ये जो मुनिराज है वो तो कोई 24 घंटे तो अपने स्वरूप में एकाग्र नहीं हो रहे, उनके कभी कभी शुभ परिणाम भी आते हैं, तो उसमें वो प्रथम तो वहां उनका ख्याल जाएगा, लक्ष्य जाएगा, क्योंकि वे उनके ध्येय है और वह स्वयं ध्याता है, लेकिन वहाँ ध्येय, ध्याता और ध्यान, ये तीनों का जो भेद है वो विलीन हो जाके वो एक अद्वैत हो जाता है। तो क्या कहा देखो उन्होंने, फिर से मैं पढ़ता हूँ। अब इस प्रकार अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय तथा सर्वसाधुओं को प्रणाम करके, प्रणाम और वंदनोच्चार से प्रवर्तमान द्वैत के द्वारा, यानी ऐसा नहीं समझना राग करते करते वितरा हुए, देखो शब्दों में कहीं अटकना नहीं, भाव्य भावक भाव से उत्पन्न, यानी एक भाव्य है, यानी जिनका हमें, जिनकी भावना भानी है, और एक भावक है जो उनकी भावना भाने वाले, ऐसे भाव से उत्पन्न अत्यंत गाढ़, अत्यंत गाढ़ यानी इतना एकमेक हो गया है कि इतरेतर मिलन के कारण, यानी एक दूसरे के मिलने के कारण समस्त स्वपर का विभाग विलीन हो जाने से क्या हुआ, ये विभाग जो है सब खत्म हो गया, दोपना जो था वो खत्म हो जाने से अद्वैत प्रवर्तमान है। ऐसा नमस्कार करके उन्हीं अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुओं को, साधुओं के आश्रम को, यानी जो कि आश्रम कैसा है कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन प्रधान होने से, वो आश्रम यानी वो कुटिया ऐसी वैसी वो नहीं समझना, उनकी जो अवस्था है वो कैसी है कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन यानी बहुत ही शुद्ध ऐसे दर्शन ज्ञान प्रधान होने से, सहज शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले आत्म तत्व का श्रद्धान और ज्ञान जिनका लक्षण है, जिसका लक्षण है ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का संपादक है। अब देखो पहले दो देख लेते हैं नीचे फुटनोट में, सहज शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले, यानी सहज शुद्ध दर्शन और ज्ञान जिनका स्वभाव है वे, और संपादक यानी प्राप्त कराने वाला, उत्पन्न करने वाला, तो ऐसा वे स्वयं ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के प्राप्त करने वाले हैं ना, उत्पन्न करने वाले हैं, तो वो उसे प्राप्त करके सम्यक दर्शन ज्ञान संपन्न होकर जिसमें कषायकन विद्यमान होने से, कषायकन यानी कषाय का सूक्ष्मांश, अभी संजोलन कषाय है ना उनमें, तो कषायकन विद्यमान होने से जीव को जो पुण्यबंध की प्राप्ति का कारण है, ऐसे सराग चारित्र को, यानी देखो ये 28 मूल गुण पालन करने के जो परिणाम है वह भी कषाय कण है, हा? और ऐसे कषाय कण को यानी जो विद्यमान है वो कैसे है, तो पुण्य बंध का कारण है बता रहे, क्या कह रहे हैं, पुण्यबंधी का, पुण्यबंध की प्राप्ति का कारण है, ऐसे सराग चारित्र को, वह सराग चारित्र क्रम से आ पड़ने पर भी, यानी उनको ऐसा मन में आ रही है ये 28 मूलगुण में से अभी नंबर 22 का मूलगुण मैंने पाला ही नहीं है, नहीं ना अभी 23 शायद हो सकता है 21, ऐसे कोई परिणाम नहीं आते हैं कि क्रम से एक के बाद पालन करने, वो तो ऐसे परिणाम सहज रीति से आ जाते। क्या कहा देखो देखो, ये सराग चारित्र यानी वह जो 28 मूलगुण पालन करने के जो परिणाम है वो क्रम से आ पड़ने पर भी, यानी गुणस्थान आरोहण क्रम के साथ बलात् चारित्र मोह के मंद उदय से आ पड़ने पर भी दूर उल्लंघन करके जो समस्त कषाय क्लेश रूपी कलंक से भिन्न होने से निर्वाण प्राप्ति का कारण है, ऐसे वितराग चारित्र नामक साम्य को प्राप्त करता हूँ। वहाँ क्या बताया, वो सराग चारित्र जो है वह तो बंध का कारण है, बंध प्राप्ति का कारण है, और जो यहाँ समस्त कषाय क्लेश रूपी कलंक से भिन्न क्या है, वो कौन है, निर्वाण प्राप्ति का कारण ऐसा कौन, तो वितराग चारित्र क्या है वह, ऐसे साम्य को प्राप्त करता हूँ। अब क्या करें देखो, ये जो कषाय है ना जो अभी बाकी है, कौन से, ये 28 मूलगुण पर है, वो कषाय कषाय क्लेश रूपी कलंक है, कौन लिख रहे, स्वयं आचार्य क्या कह रहे, ये जो मैं शास्त्र लिख रहा हूँ वह भी कलंक है मेरे लिए, प्रमाद है, कषाय रूपी कण जो है उससे मुझे बंध का ही कारण है, और जो वितराग चारित्र है कौन सा, कि जिसमें समता वृत्ति है, साम्य भाव है, राग द्वेष या पुण्य पाप रूपी कोई भी कषाय का वहां लवलेश नहीं है, लवलेश नहीं मतलब नहीं है वहां, तो वो जो सराग चारित्र है, वितराग चारित्र है, उस वितराग चारित्र जो कैसा है कि निर्वाण प्राप्ति का कारण है, मुक्ति का कारण है, निर्बंध होने का कारण है, और वह सराग चारित्र बंध का कारण है। हाँ जी, अब उसका अर्थ चाहिए ना आपको, आपको चाहिए गुणस्थान आरोहण क्रम में बला चारित्रमों के मंद उदय आ जाने पर भी। देखिए, जब मुनिराज चौथे पांचवें गुणस्थान के बाद जो मुनि दशा लेते हैं तो वो अंतरंग में शुद्धता अधिक बढ़ने के कारण डायरेक्ट सातवें में जाते हैं, यानी आरोहण हो गया ना, ऊपर चढ़े। उनको याद करने दो, हाँ कोई बात नहीं, आपने सुन लिया ना उनका, बहुत अच्छा। कौन सा? हाँ, तीव्र उदय होने से क्या होगा, छठे में आएगा, और मंद होगा तो, मंद होगा तो सातवें से ऊपर जाएगा, मंद तर होगा तो आठवें में जाएगा, मंद तम होगा तो नौवें में जाएगा, और वो सूक्ष्म हो जाएगा लोग तो वहां कहते हैं दसवें में जाए। तो ये आरोहण की पद्धति है। अब यहां क्या है, सातवें तक गए, ऊपर चढ़े, फिर भी वहां क्या हो गया, चारित्र मोह के मंद उदय आ पड़ने पर भी, यानी वहां फिर भी वहां उनको उदय तो है लेकिन वह अन्य की अपेक्षा मंद उदय है, क्योंकि हमने देखा ना जो संज्वलन कषाय है उसका जब हम वर्णन करते हैं या उसकी कैरेक्टर देखते हैं तो पानी के ऊपर खींची हुई लकीर जैसा, मतलब आए और निकल गए, वो अनंतानुब्रंधी या आदि अन्य जो है उसके हिसाब से वो मंद ही है। तो उसके आरोहण के क्रम में बलाचारित्रमों के मंद उदय आ जाने पर, आ पड़ने पर भी, यानी वो फिर नीचे आ जाते फिर भी, उसको भी दूर उल्लंघन करके क्या करते हैं, वो जो कषाय है वो कैसे है, कषाय क्लेश रूपी कलंक से ऐसे भिन्न है, निर्वाण प्राप्ति का कारण है, ऐसे वितराग चारित्र नामक साम्य को प्राप्त करता हूँ, यानी वे स्वयं कहते हैं कि मैं भी ये लिखना वगैरह तो ठीक है लेकिन उसको भी हटाकर मैं अपने स्वरूप में एकाग्र होने की कोशिश करता हूँ। ये आरोहण समझ में, गुणस्थान आरोहण, आरोहण यानी देखो हम घोड़े सवार होता है ना, घोड़े सवार वो क्या होता है, अश्व के ऊपर आरोहण करता है यानी घोड़े के ऊपर चढ़ता है, वैसे ये ऐसे ऊपर ऊपर के गुणस्थान में आरोहण करते चढ़ते हैं, गिरियारोहण कहते हैं ना, गिरियारोहण यानी पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं आप लोग, पर्वतारोहण, चलो हाँ चलो एक ही है। अब साम्य को प्राप्त करता हूँ, सेकंड लाइन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ऐक्य स्वरूप एकाग्रता को मैं प्राप्त करता हूँ, यानी हाँ प्राप्त हुआ हूँ, करता हूँ नहीं हुआ हूँ, यानी वो मैं प्राप्त करता हूँ, और उसके आगे लिखते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ऐसा ऐक्य स्वरूप एकाग्रता को मैं प्राप्त करता हूँ, प्राप्त हुआ हूँ, यह प्रतिज्ञा का अर्थ है। इस प्रकार तब इन्होंने साक्षात मोक्ष मार्ग को अंगीकार किया। अब वे अभी 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 इसके संस्कृत वाला हम, हाँ बहुत अच्छा,
जयसेन आचार्य के।
अब यहाँ हम जयसेन आचार्य की जो टीका है
उसमें ये पांचों श्लोकों का फिर लेखें।
हाँ, फिर से दोबारा देखेंगे, क्योंकि अपनी ये परिपाटी रही है अरविंद भाई कि पहले यहाँ पर पढ़ेंगे और अमृत चंद्राचार्य की टीका पढ़ने के बाद वो हिंदी में, फिर अभी जयसेन आचार्य की संस्कृत में टीका पढ़ेंगे।
देखो, इस टीका में जो बोल्ड लेटर्स लिखे हैं वो मूल प्राकृत गाथा के वर्ड जो है शब्द उसको बोल्ड में लिखा है, उसी प्राकृत का संस्कृत क्रियापद या संस्कृत अर्थ उसके सामने दिया है और बाद में उसको एक्सप्लेन किया है। तो ये पणमामी जो आया ना पहले गाथा में, पणमामी वड्ढमानम, उसका भी अर्थ करते हैं। पणमामी इत्यादि पदखंडना रूपेण व्याख्यानम क्रियते, यानी पणमामी ऐसा जो इसमें शब्द आया है अभी उसका व्याख्यान यानी उसका भी एक्सप्लेनेशन पूरा देते हैं। पणमामी यानी प्रणमामी,
चार नंबर पेज पर
मिला सबको,
एक या दो जो लिखे हैं श्लोक उसके नीचे लाइट छोटे अक्षरों में संस्कृत है उसको देखना।
प्रणमामी यानी मैं प्रणाम करता हूँ, यानी प्रणमानी यानी प्रणाम करता हूँ। जो कहा यानी कौन करता है प्रणाम, तो करता कौन है उसका प्रणाम करने वाले, तो एस यानी एशो एशः अहम मैं कैसा हूँ मैं, ग्रंथ करणोद्यत मना स्व संवेदन प्रत्यक्ष, यह मैं स्व संवेदन प्रत्यक्ष बता रहे, यह मैं यानी मनुष्य मैं ऐसा नहीं, मुनि मैं ऐसा नहीं, यह मैं कैसा हूँ स्व संवेदन प्रत्यक्ष, अपने आत्मानुभूति के द्वारा जिसको मैंने जाना है ऐसा मैं। इसमें भी आया था ना अमृत चंद्राचार्य के, इसमें उसमें भी उन्होंने बताया था यह मैं, उन्होंने लिखा था कि स्व संवेदन प्रत्यक्ष और दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप मैं, ऐसा लिखा था उन्होंने। और ये लिखते हैं कि स्व संवेदन प्रत्यक्ष ऐसा मैं और कैसा हूँ, ग्रंथ करणोद्यत मना, ग्रंथ करने के लिए मेरा मन उद्यत हुआ है
ऐसा मैं
क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कम यानी किसको, वर्धमानम यानी वर्धमान को, अभी वर्धमान का अर्थ बताते हैं, अवसमंतात वृद्धम वृद्धम यानी जो सभी प्रकार से वृद्ध है उसको वृद्ध कहा, यानी वर्ध यानी वृद्ध का वर्ध हुआ हा? मानम यानी प्रमाणम ज्ञानम यस्य सभवति वर्धमानः, मान यानी प्रमाण या ज्ञान, मान को मान यानी प्रमाण भी कहते हैं, मान का अर्थ ज्ञान भी होता है या मान का अर्थ प्रमाण ज्ञान भी होता है। तो जिसका प्रमाण ज्ञान है ऐसे जो वर्धमान है, तो अवाप्योर लोपः इति लक्षणेन भवति अकार लोपो अवशब्दस्य अत्र, यानी ये जो अवसमंतात वृद्धम ऐसा लिखा है तो अवसम उसका लोप हो गया और वृद्ध का वर्ध हो गया, वृद्धि का वर्धमान। तम रत्नत्रयात्मक प्रवर्तमान धर्मतीर्थ उपदेशकम श्री वर्धमान तीर्थकर परम देवम, यानी किसको नमस्कार करता हूँ, तो रत्नत्रयात्मक ऐसे जो प्रवर्तमान अभी वर्तमान काल में जिसका धर्मतीर्थ चल रहा है या धर्मतीर्थ का जिन्होंने उपदेश दिया है, मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले वर्धमान तीर्थंकर जो परम देव है देवाधिदेव है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो क्व प्रणमामी कब प्रणाम करता हूँ, प्रथमतः एव सबसे पहले, किम विशेषम अब ये जो वर्धमान तीर्थंकर है वे कैसे है, क्या विशेषता है उनमें, सुरासुर मनुसिंद वंदितम त्रिभुवन आराध्य अनंत ज्ञानानि गुणाधार पदाधिष्ठित स्वात् पदाभिलाषिभिः त्रिभुवनाधिशैः सम्यक् आराध्य पादारविन्दत्वाच्च सुरासुर मनुष्येन्द्र वंदितम, यानी तीनों भुवन के द्वारा तीन लोक के द्वारा जो आराध्य है पूजित है ऐसे अनंत ज्ञानादि गुणों के आधारभूत ऐसे पद में तिष्ठने वाले होने से
उस पद के अभिलाषी ऐसे जो त्रिभुवन के जो ईश है उनकी सम्यक आराध्य, ऐसे जो पादारविंदत्वाच उनके जो चरण कमल है उनकी सम्यक आराधना करने योग्य होने से सुर असुर और मनुष्यों के इंद्र द्वारा वे वंदित है। ये सारा अर्थ हमने पहले देखा था, अभी इसको फिर जयसेन आचार्य इसको ही बताते हैं।
जयसेन आचार्य जो भी कहेंगे उसको और खुला खुला के मतलब और डिटेल में बताएंगे, बहुत मजा आ रहा है।
पुनरपि की विशेषण और क्या विशेषता है उनकी, वर्धमान जो महावीर भगवान उनकी और क्या विशेषता है। धोद घाई कम्म मलम, यानी घाई यानी घाती कर्म मल जिन्होंने धो डाले है, तो कैसे है। परम समाधि समुत्पन्न रागादि मल रहित पारमार्थिक सुखामृत रूप निर्मल नीर प्रक्षालित घाती कर्म मलत्वात अन्य शाम, क्या कहते पहले,
परम समाधि से उत्पन्न,
परम समाधि से उत्पन्न रागादि मल रहित और पारमार्थिक सुख रूपी अमृत रूप जो निर्मल जल है, नीर है ना, उस निर्मल जल से प्रक्षालित यानी धो डाले है घाती कर्म मल को उन्होंने अपने पारमार्थिक सुखामृत रूप निर्मल जल से धो डाला है। और कैसे, अन्येषां पापमल प्रक्षालन हेतुत्वाच, यानी अपने घाती कर्ममल तो धो डाले ही है और जो अन्य उनको वंदन करते हैं उनके पापमल को भी प्रक्षालन होता है, यानी उनके पापमल भी
प्रक्षालन के हेतु
धो डालते हैं यानी धुल जाते हैं।
हाँ।
क्योंकि उनको वंदना करने वाले को पुण्य बनता है
तो
उनका पाप नष्ट हो जाता है, पाप दूर होता है, यानी अपने तो घाती कर्म मल उन्होंने दूर किए और उनके भक्त गुणों का पापमल दूर हो जाता है, इसलिए उनको धौत घाती कर्म मलम ऐसा कहा, जिन्होंने घाती कर्म मल को दूर किया है धो डाला है ऐसे। पुनश्च किम लक्षणम, और उनका क्या लक्षण है, सिद्धम दृष्ट श्रुत अनुभूत विषय सुखाभिलाष रूप नीर प्रवेश रहितेन परम समाधि पोतेन उत्कीर्ण संसार समुद्रत्वात् अन्येषां तरणोपाय भूतत्वाच्च तीर्थम, उनको तीर्थ कहा यानी उनको तारने वाले। अभी किसने से तारने वाले, जब हम कहते हैं ना कोई समुद्र में गिर गया तो उसमें से तारते हैं, तो ये किसने से तारते हैं, तो देखो कि दृष्ट यानी देखे हुए, श्रुत यानी सुने हुए, अनुभूत यानी स्वयं अनुभव किए हुए, ऐसे जो विषय सुख की अभिलाषा रूप नीर यानी जल उसके प्रवेश रहते ना, उसके नीर में जिनका प्रवेश ही नहीं है, और परम समाधि पोते न उत्तीर्ण संसार समुद्रत्वा, यानी परम समाधि रूप परम समाधि के कारण जिन्होंने संसार समुद्र उत्तीर्ण कर लिया है और अन्येषां यानी दूसरों के तरणोपाय भूतत्वाच, दूसरों को तारने वाले होने से वे तीर्थ है, यानी स्वयं तीर गए हैं और दूसरों को तारते हैं, इसलिए उनको तीर्थ कहा। पुनश्च किम रूपम, और उनका क्या स्वरूप है, धम्मस्थ कत्तारम यानी धर्म के करने वाले हैं। अभी उसको बताते हैं, निरूपरागात्म तत्व परिणति रूप निश्चय धर्मस्य उपादान कारणत्वात् अन्येषां उत्तम क्षमादि बहुविध धर्मोपदेशकत्वाच्च धर्मस्य कर्तारम। जयसेन आचार्य की विशेषता है कि वो निश्चय और व्यवहार दोनों अर्थ बताते बताते जाते हैं, यानी धर्मस्य कर्तार यानी अपने स्वयं के धर्म के कर्तार है और अन्य के धर्म के कर्तार है। पहले उन्होंने कहा अपने को स्वयं तीर गए अन्य को तारे, अपने घाती कर्म धो डाले और अन्यों के पाप मल धो डाले, ऐसे अभी यहाँ भी क्या लेना कि जो निरूप राग यानी राग रहित परिणति होने के कारण और निश्चय धर्म के उपादान कारण होने से ये तो अपने लिए हुए, यानी अपने स्वयं में उन्होंने जो धर्म प्रकट किया, पूर्ण वितरकता प्रकट की, उसके वे स्वयं उपादान कारण है, और दूसरों के लिए अन्येषां यानी अन्य के लिए उत्तम क्षमादि आदि अनेक प्रकार का धर्मोपदेश देने के कारण वो धर्म के करने वाले हैं। इति क्रिया कारक संबंध है। इस तरह से यहाँ क्रिया और कारक का संबंध है। एवं अंतिम तीर्थकर नमस्कार मुख्यत्वेन गाथागता, इस प्रकार अंतिम तीर्थंकरों को नमस्कार करने की मुख्यता से यह पहली गाथा हुई। तदनंतरम प्रणमामि, उसके पश्चात और प्रणाम करता हूँ। कान यानी किम को नमस्कार करता हूँ, पहले तो कम लिखा था यानी किसको, तो वर्धमान एक को नमस्कार करके शुरुआत की थी, अभी अन्य को औरों को यानी बहुत सारों को नमस्कार करते हैं, तो किन किन को करते हैं? शेषे पुण तीर्थयरे ससौ सिद्धे, शेष तीर्थंकरान यानी अभी बाकी के तीर्थंकरों को, पुनः सर्व सिद्धान यानी वृषभादि पार्श्व पर्यंतान, शुद्धात्म उपलब्धि लक्षण सर्व सिद्ध सहितान एतान सर्वान अपि, यानी वृषभ से लेकर आदिनाथ भगवान से लेकर पार्श्वनाथ तीर्थंकर पर्यंत, और शुद्धात्म उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसे सर्व सिद्धों सहित इन सब को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रथम भूतान, वे कैसे है? विशुद्ध सद्भावे निर्मल आत्मोपलब्धि बलेन विश्लेषित अखिल आवरणत्वात् केवल ज्ञान दर्शन स्वभावत्वात् च विशुद्ध सद्भावान, यानी निर्मल आत्मा की उपलब्धि के बल से विश्लेषित अखिल आवरण यानी उन्होंने अखिल आवरण जो है ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि सारे ने घाती कर्म उन्होंने विश्लेषण हो गया ना उसका, तो उन्होंने विश्लेषित कर दिया। हमने पहले देखा था कि कर्म का और जीव का कौन सा संबंध है, संश्लेष, और इन्होंने क्या किया उसको विश्लेष कर दिया, तो ये कर्म से रहित हो गए। तो पूर्ण आवरण का उन्होंने विश्लेषण कर दिया यानी वो कर्म नष्ट हो गए, और उसके कारण केवल ज्ञान और केवल दर्शन स्वभाव उनका उत्पन्न होने से उनको विशुद्ध सद्भावान लिखा है। श्रमणेय यानी श्रमणों को भी, तो श्रमण शब्द वाच्यान आचार्य उपाध्याय साधुंश्च, यानी श्रमण शब्द से आचार्यों को उपाध्यायों को और साधुओं को नमस्कार करते हैं। किम लक्षणान, उनका लक्षण क्या है? नाण दंशन चरित्र तव वीरिया यारे, हमने देखा था ना पांच आचार से युक्त है, ज्ञानाचार दर्शनाचार वगैरह, तो सर्व विशुद्ध द्रव्य गुण पर्यायात्मके चिद वस्तुनि यासौ रागादि विकल्प रहित निश्चल चित्त वृत्ति तद अंतर्भूतेन व्यवहार पंचाचार सहकारी कारणोत्पन्नेन निश्चय पंचाचारेण परिणतत्वात् सम्यक दर्शन चारित्र तपो सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तपो वीर्याचारोपेतान। इति क्या कहते हैं कि सर्व विशुद्ध, सब प्रकार से विशुद्ध ऐसे जो द्रव्य गुण पर्यायात्मक ऐसी जो चिद वस्तु चैतन्य वस्तु यानी स्वयं जीव
स्वात्मा
यासौ यानी उसमें रागादि विकल्प रहित होकर निश्चल चित्त वृत्ति के साथ उसमें वे लीन हो गए हैं। आचार्य उपाध्याय और साधु आत्मा में लीन हो गए हैं
अंतर्भूतेन
व्यवहार पंचाचार सहकारी कारण उत्पन्न में, अभी जो व्यवहार से जिसको पंचाचार कहा है, दर्शनाचार ज्ञानाचार चारित्राचार तपाचार वीर्याचार, व्यवहार से भी जो आचार उसका वर्णन जो किया है, तो उनका वहाँ निमित्त भी है, उनका सद्भाव भी है, इसलिए उसको सहकारी कारण कहा। सहकारी कारण का
मदद करने वाला है,
निमित्त कारण, निमित्त को सहकारी कारण भी कहते हैं, जैसे उपादान कारण और निमित्त कारण, तो निमित्त को दूसरा एक शब्द है सहकारी कारण। तो इस सहकारी कारण से उत्पन्न ऐसे निश्चय पंचाचार्य न, यहाँ हमेशा व्यवहार पंचाचार को निमित्त कारण कहेंगे, परंतु हमने पहले से ही देखा है कि निमित्त कार्य में कुछ नहीं करता, तो निश्चय जो अंतर्लीनता है वो तो उपादान कारण से हुए, व्यवहार पंचाचार पालते हैं इसलिए निश्चय पंचाचार हुए ऐसी बात नहीं है, परंतु जब जब निश्चय पंचाचार पालते हैं तब तब उसी के साथ साथ व्यवहार पंचाचार भी होते हैं। ऐसा नहीं कि निश्चय से शुद्ध हो गए और व्यवहार में भले जैसे कुछ क्रिया चलती रहे और जैसा कुछ राग होता रहे, ऐसी बात नहीं है। पर उस रूप निश्चय पंचाचार रूप परिणमित होने के कारण वे सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य ये आचार से युक्त है और उनको ये ऐसे श्रमणों को नमस्कार करता हूँ। एवं उसी प्रकार शेष त्रयोविंशति तीर्थंकर नमस्कार मुख्यत्वेन, इस प्रकार अन्य जो 23 तीर्थंकरों को नमस्कार करने की मुख्यता से गाथा गता पेज नंबर सात पर आना, बीच में छोटी लिखी जो है, यहाँ दो गाथा पूर्ण हुई, अभी तीसरी गाथा जो हमने आज पढ़ी थी वहाँ से। अथ तेते सौवे तान तान पूर्वोक्तान एव पंच परमेश्विनः सर्वान, यानी उन उन सबको, यानी ऐसे ऐसे जो ऊपर बताए हुए सभी परमेश्वरों को सबको वंदामीय वंदे, यानी वंदन करता हूँ। कौन करता है? अहम यानी मैं। कथम तो किस प्रकार से नमस्कार करता हूँ? समगम समगम यानी समुदाय वंदनापेक्षा युगपत युगपत, यानी सबको एक साथ वंदना करने की अपेक्षा से सबको एक साथ ऐसा समग्र या कहो या समग्र समग्र कहो या युगपत कहो। पुनरपि कथम और किस प्रकार से? प्रत्येकमेव प्रत्येकम प्रत्येक वंदनापेक्षा प्रत्येकम प्रत्येकम, यानी मैं सबको एक साथ नमस्कार करता हूँ और प्रत्येक को नमस्कार करता हूँ। न केवलम एतान वंदे, इन्हीं को मात्र वंदन करता हूँ ऐसा नहीं है, तो किसको? अरहंते अरहतहा, अरहंत भगवान को नमस्कार करता हूँ। किम विशिष्टान, वे कैसे है? वर्तन्ते मानुषे खेते वर्तमानान, वर्तमान में है कुव, यानी कहाँ? मानुष्य क्षेत्र, मनुष्य क्षेत्र में है। कितना है मनुष्य क्षेत्र? हाँ, तथा ही उसी प्रकार साम्प्रतम अत्र भरत क्षेत्रे तीर्थकरा भावात, यानी तीर्थंकरों का अभाव होने से, साम्प्रतम यानी अभी इस काल में, अत्र यानी यहाँ भरत क्षेत्र में तीर्थंकरों का अभाव है। पंच महाविजय स्थित श्री सिमंदर स्वामी तीर्थकर परम देव प्रभृति तीर्थंकर ही सह तान एव पंच परमेश्विनो नमस्कारों में, क्या कहते हैं? अभी यहाँ तो भरत क्षेत्र में तीर्थंकरों का अभाव है, परंतु पंच महाविदेह क्षेत्र में रहने वाले जो सिमंदर आदि तीर्थंकर है, परम देव है, परम देव प्रभृति यानी सिमंदर आदि, यानी वो सारे 20 के 20 आ गए, इन तीर्थंकरों के साथ उन सब पंच परमेश्वरों को नमस्कार करता हूँ। कया अब किस प्रकार, यानी साधन क्या है नमस्कार करने का? नमस्कार करने के लिए किस साधन से नमस्कार करेंगे? तो कर्णभूत है यहाँ, अभी कर्णभूत यानी साधन कौन से है? तो मोक्ष लक्ष्मी स्वयंवर मंडप भूत दिन दीक्षा क्षणे मंगलाचार भूतया अनंत ज्ञानादि सिद्ध गुण भावना रूपया सिद्ध भक्तिया, यानी मैं सिद्ध भक्ति से उनको नमस्कार करता हूँ। तो ये सिद्ध भक्ति कैसी है? तो उसको कहा है कि अभी यह मोक्ष लक्ष्मी का स्वयंवर मंडप है और उस स्वयंवर मंडप में ये दीक्षा क्षण जब दीक्षा ली थी, स्वयं ये कहते हैं कुनकुंदाचार्य कि जो दीक्षा ली थी उस समय में मंगलाचार भूतया मंगलाचार रूप से सिद्ध भक्ति की थी उन्होंने। कैसे सिद्ध है? तो अनंत ज्ञानादि सिद्ध गुण भावना रूपया, अनंत ज्ञानादि जो सिद्ध गुणों की भावना रूप, उसका चिंतन रूप ऐसी जो सिद्ध भक्ति है उसके द्वारा मैं नमस्कार करता हूँ। और किसके द्वारा नमस्कार करता हूँ? तथैव निर्मल समाधि परिणत परम योगी गुण भावना लक्षणया योग भक्त्या चेती, यानी निर्मल समाधि से परिणत ऐसे जो परम योगी है, परम गुरु है, परम मुनिराज है उनके गुणों की भावना का यानी उसका चिंतन रूप लक्षण जिसका है ऐसी जो योग भक्ति है उसके द्वारा मैं नमस्कार करता हूँ। यानी यहाँ मुनियों के जो आचरण है अभी हमने देखा था ना कौन से वो हाँ कृति कर्म शास्त्र मुनियों के जो आचार कैसे होना चाहिए नित्य उनके कौन सी वंदना कैसी करनी चाहिए क्या स्तुति रूप बोलना चाहिए उसके मुनियों के अलग अलग आचार है उसमें वो शुद्ध भक्ति आचार भक्ति योग भक्ति वगैरह 10 भक्ति आती है इसके साथ पाय सर्ग करना नमोकार मंत्र बीच बीच के बोलना उनकी वो विधि से वे नमस्कार करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि इस तरह से मैं नमस्कार करता हूँ एवं पूर्व विदेह तीर्थकर नमस्कार मुख्यत्वेन गाथागते इति अभिप्राय गाथागता इति अभिप्राय यानी इस तरह से पूर्व विदेह में वर्तमान जो तीर्थंकर है उनके नमस्कार के मुख्यत्व से ये तृतीय गाथा हो गई। अच्छा अब चौथी गाथा का अर्थ बताते हैं किच्चा कृत्वा क्या करके तम नमो यानी नमस्कारम नमस्कार करके केभ्या यानी किसको नमस्कार करके अर्हंताणम सिद्धाणम तह नमो गणहराणम अज्ञावय वग्गाणम साहूणम चेव अर्हत अर्हंत भगवान सिद्ध गणधर उपाध्याय साधुभ्यश्चैव अने अरहंतों को सिद्धों को गणधरों को उपाध्यायों को और साधुओं को कति संख्योपेतेभ्य उसमें से किनको कितनी संख्या में तो सबको सर्वेसिं सर्वेभ्या इति पूर्व गाथा त्रयेण कृत पंच परमेशी नमस्कार उपसंहारोयम् यानी चौथी गाथा में पहले जो पंच परमेशियों को नमस्कार किया था उन्हीं को पुनश्च यहाँ स्मरण करके उसका उपसंहार करते हैं यानी नमस्कार सबको फिर एक बार दोहराते हैं एवं पंच परमेशी नमस्कारम कृत्वा किम करोमि इस प्रकार पंच परमेशियों को नमस्कार करने के बाद अभी मैं क्या करूंगा ना क्या करता हूँ तो उपसंपयामि उपसंपद्य यानी समाश्रयामि यानी मैं आश्रय लेता हूँ या उसमें लीन होता हूँ किम क्या मैं धारण करता हूँ तो सम्मम यानी साम्यम यानी चारित्रम यानी अंतरंग स्थिरता की बात हो रही है यस्मात् किम भवती तो ऐसा चारित्र अंगीकार करने से क्या होगा
क्या फायदा
हाँ क्या फायदा इन दिव्यन का क्या फायदा जब तो निर्वाण संपत्ति यस्मात् निर्वाण संप्राप्ति उससे निर्वाण की प्राप्ति होती है किम कृत्वा पूर्वम परंतु उसके क्या उसके पहले क्या करके ये चारित्र प्राप्त होगा इसी बात है यानी चारित्र से ही निर्वाण होगा चारित्र खलु धम्मो का है ना चारित्र से निर्वाण प्राप्ति होती है परंतु उस चारित्र के पूर्व क्या होता है उसके बाद कहते हैं समासिज्ज यानी समासाध्य यानी प्राप्त करके कम किस को प्राप्त करके विशुद्ध नाना दंशन पहाना समम विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण प्रधानाश्रमम विशुद्ध ज्ञान दर्शन रूप जो प्रधान आश्रम है उसको प्राप्त करके केशाम संबंधित्वेन किसके संबंध से तेसिम तेषाम पूर्वोक्त पंच परमेष्ठिनाम इति यानी पहले जो पूर्वोक्त पंच परमेष्ठियों ने जैसा विशुद्ध ज्ञान दर्शन प्रधान आश्रम पाया था वैसा प्राप्त करके अभी उसी का अर्थ बताते हैं तथा ही वह इस प्रकार है अहम आराधक मैं आराधक हूँ एते च अर्हदादया आराध्या ये जो अर्हत आदि में अरहंत सिद्ध आचार्य सारे जो उन्होंने अभी तक पंच परमेश्वरों को नमस्कार किया वे सारे आराध्य है इति आराध्य आराधक विकल्प रूपो द्वैत नमस्कारो बन्यते इस तरह से जो आराध्य और आराधक ऐसा जो विकल्प है ऐसे विकल्प रूप जो है उसको द्वैत नमस्कार करते कहते हैं क्योंकि वहाँ दो बातें हुई ना जिसकी आराधना करने वाला करेंगे वे आराध्य और उनकी आराधना करने वाला वो आराधक इस प्रकार दो चीजें होने से दो बातें होने से वहाँ द्वैत नमस्कार कहा है। अब यहाँ रुकते हैं बाकी कल ले लेंगे।
ज्ञान ते तुझे लोकानो तो वाणी मस्तक नमो सदा देतो।